ॐ भद्रं कर्णीभिः शृणुयामदीवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवः सस्तनूभिर्व्यसीमदीवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् महतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवात्र पञ्चमम्। भाई 20 मिनट तो तुम्हारे कम हो गए, अभी कितना बचा है? 40 मिनट। कल विचार चल रहा था कि कर्म को समझना चाहिए, कर्म के ज्ञान में ही कर्म की सिद्धि है। हम कर्म जिसलिए कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें क्या मिलना चाहिए, हम जो चाहते हैं मन से जो कल्पना करते हैं फल की, वो कल्पना सत्य नहीं है। शास्त्र जो चाहता है, शास्त्र जो कहता है, वो फल मिलना चाहिए। और शास्त्र जिस फल की चर्चा करता है उस फल की प्राप्ति तब ही होती है कि पहले कर्म को जाने, कर्म को समझे, फिर कर्म करे तो वही फल उसको मिलता है। कर्म का फल धन, कर्म का फल मान प्रतिष्ठा या संसार के भोग, यह लोक भोग या परलोक भोग नहीं है। ये तो हम लोकाचार को देख करके, लोकाचार की परंपरा को चला रहे हैं। लोगों ने जैसा बताया वैसा ही हम मान रहे हैं और उसी फल के लिए दौड़ रहे हैं। परंतु शास्त्र ने और विशेष प्रकार से वेदांत शास्त्र ने जो कर्म का फल बताया है वो ज्ञान बताया है। कर्म से ज्ञान होना ही चाहिए, तब ही कर्म की सार्थकता है। कर्म से अज्ञान निर्माण हो जाए, कर्म से आसक्ति निर्माण हो जाए, काम निर्माण हो जाए, लोभ मोह आदि आदि विकार निर्माण हो जाए, तो कर्म की वो विकृति है, फल सही नहीं मिलेगा। चाहे वो घोर कर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो। कर्म कैसा हो वो प्रश्न नहीं है। असत कर्म का भी फल ज्ञान मिलता है और सत्कर्म का फल भी ज्ञान होता है, परंतु कर्म करने की युक्ति, कर्म को जान करके कर्म करोगे तो हर कर्म ज्ञान बनता है, हर कर्म ब्रह्म बनता है। भगवान ने भी पीछे बता दिया है कर्म ब्रह्म है। ब्रह्म है का मतलब क्या है? कर्म ज्ञान है। कर्म आत्मा भी बन जाता है, कर्म ब्रह्म भी बन जाता है। बनाना तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कर्म का चर्चा बहुत करते हैं। कर्म कैसा करना चाहिए ये बता देते हैं, परंतु कर्म के रहस्य को समझते नहीं हैं। इसलिए तो भगवान ने पहले कह दिया है कि मैं इसलिए कह रहा हूं सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सर्वकर्मणां सिद्धये। वेदांत शास्त्र में जो पहले प्रारंभ में जो कर्म बताया, वेदांत शास्त्र कर्म को करने के लिए कहता है, परंतु कर्म ब्रह्म बनाने के लिए, कर्म करने के लिए कहता है। और वेदांत शास्त्र के दृष्टि से हर कर्म ब्रह्म बन सकता है, परंतु बिना चिंतन का नहीं। क्या? बिना चिंतन का नहीं। इसलिए शास्त्र ने बाह्य कर्म की अपेक्षा से अंतक जो अंदर का कर्म है उस कर्म की विशेषता बताई है। आपको सुधारना है तो अंदर का कर्म सुधारना है, क्योंकि वही कर्म आपको बनाता है और वही कर्म आपको बिगड़ाता है। अंदर एक जो कर्म होता है बाह्य कर्म, वैषयिक कर्म है, परंतु अंदर का जो कर्म है वो अंदर का कर्म कर्म भी है, विकर्म भी है और दुष्ट कर्म भी है, कुत्सित कर्म भी है और अकर्म भी है। कर्म करे परंतु कर्म बने नहीं। देखो, कर्म कर्म नहीं बनता है ना तो ज्ञान बनता है, ये ध्यान रखो। कर्म जब कर्म नहीं बनेगा तो कर्म क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा। वही युक्ति भगवान इन कारणों के माध्यम से बता रहे हैं। कर्म के पांच कारण हैं। पहला कारण है अधिष्ठान, दूसरा कारण है कर्ता, तीसरा कारण है करण अर्थात इंद्रिया साधन, और चौथा कारण है पृथक चेष्टा, विविधा च पृथक चेष्टा, अलग अलग चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या होता है? चेष्टा का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म कर्म। काम चेष्टा है, संकल्प चेष्टा है, इच्छा चेष्टा है, वासना चेष्टा है। चेष्टा क्या है? जो सूक्ष्म प्राण के संयोग से अंतकरणस्थ जो कर्म है और अंतकरणस्थ जो गुण है, इन गुणों का उन संस्कारों का और प्राण का संबंध होता है और उस संबंध होने से उन कर्मों के अंदर चेष्टा निर्माण होती है, क्योंकि प्राण चेष्टात्मकम प्राणः, प्राण का स्वभाव चेष्टा है। इसलिए प्राण का संबंध से इनके अंदर क्या होती है, चेष्टा निर्माण होती है। चेष्टा का मतलब उसके अंदर कुछ हलचल होती है, सूक्ष्म स्फोट होता है, स्फोट, और वही स्फोट ही गुण होने के कारण गुणात्मक होता है, संस्कार होने के कारण वासनात्मक होता है, और मन का इंद्रियों का संबंध होता है तो इच्छा क्रिया कर्म बन जाता है। कर्म तो जब दूसरे में जाता है तब कर्म बन जाता है। क्रिया फलशालित्वम कर्मत्वम, क्रिया का संबंध फल के साथ हो जाए, कर्म कब बनता है? कर्म करने से बनता नहीं है, ध्यान रखो। कर्म तब बनता है जब आपकी क्रिया का संबंध फल के साथ हो जाए, चाहे वो कोई भी फल, अच्छा हो बुरा हो, वो प्रश्न नहीं है। विषय हो, भोग हो, लोक हो, परलोक हो, वो प्रश्न नहीं है। परंतु आपकी क्रिया का संबंध फल के साथ हो जाता है तब वो कर्म बनता है और तब आप कर्ता बनते हैं। जब कर्म बनता है तब आप कर्ता बनते हैं, और जब कर्ता बनते हैं तब भोक्ता बनते हैं, सुखी दुखी बनते हैं, रागी द्वेषी बनते हैं। वो आगे की प्रक्रिया है। कर्म क्रिया, यदि क्रिया में क्या है, क्रिया क्या है उसको आप समझे, बिना क्रिया का कर्म नहीं होता है और बिना संकल्प की क्रिया नहीं होती है, बिना संस्कारों का, बिना गुणों का और बिना प्राण के संयोग के बिना संकल्प नहीं होता है। संकल्प को भी काम कहा है। ये इतनी सूक्ष्म घटनाएं होती हैं वो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि चिंतन नहीं है। इसलिए क्या सूक्ष्म है, हम अनुभव करते हैं। जब चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन में जब गहराई में जब आप जाते हैं तो आपको स्पष्ट बिल्कुल एकदम ऐसा खुला खुला दिखाई देगा, बिल्कुल जैसा बाहर आप प्रपंच को देखते हैं, ऐसे ही चिंतन के द्वारा अंदर के प्रपंच को भी देखा जा सकता है। ये हम लोगों का अनुभव है। कहने का तात्पर्य है कि ये अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है अधितिष्ठतीति अधिष्ठानम, जो अंदर स्थिर रहे उसका नाम है अधिष्ठान। यहां कर्म का बता रहे हैं, कर्म के पांच हेतु बता रहे हैं। कर्म इन पांच कारणों से ही बनता है। कर्म तो आगे की बात है, समझना, परंतु ये पांच उनको सहयोगी है, उसके बिना कर्म नहीं बनेगा, चाहे वो आंतरिक कर्म हो चाहे बहिरंग कर्म हो। कर्म के, कर्म का अधिष्ठान क्या है? तो कर्म का अधिष्ठान है शरीर। कर्म का बता रहा हूं, जीवन का नहीं, जीवन का अधिष्ठान शरीर नहीं है। हां, कर्म का अधिष्ठान शरीर है। वो शरीर स्थूल शरीर हो सकता है, सूक्ष्म शरीर हो सकता है, कारण शरीर हो सकता है। तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ ये कर्म फल है। क्या? स्थूल शरीर जो है हमारा, ये कर्म फल है। कर्म फल, कर्म सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्त होता है, प्रारंभ नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर में कर्म की अभिव्यक्ति होती है, प्रगतिकरण होता है, और प्रारंभ होता है कारण शरीर से। कहां से? कारण शरीर से आरंभ होता है। तो कारण शरीर को यहां अधिष्ठान कहा है, क्योंकि सभी कर्म जो है आपके संस्कार के रूप में कहां रहते हैं? आप रोज सोते हो, क्यों सोते हो? नींद आती है इसलिए? नहीं, जो आपने उठते समय जो आप कर्म साथ लाए हो, उस कर्म का भोग करने के लिए और उन कर्मों से फिर अगला कर्म बनाने के लिए, तुम्हें जगाता कौन है? ये कभी सोचा आपने कौन जगाता है? कर्म ही जगाता है कि नहीं? प्रारब्ध क्या है? कर्म ही है कि नहीं है? कर्म ही जगाता है तुम्हें। और जो भोग के लिए या करने के लिए जो लाया है, भोगने के लिए जो लाया है, वो समाप्त होता है तो फिर आप पूंजी लेने के लिए फिर सोते हैं। कर्म की समाप्ति का नाम सुषुप्ति, कर्म का आरंभ उसका नाम प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध को क्रियान्वित करने वाला स्थूल शरीर, अभिव्यक्त करने वाला स्थूल शरीर। कर्म का निर्माण सूक्ष्म शरीर में होता है, आरंभ कारण शरीर से होता है, क्योंकि कारण शरीर में हमारे अनंत अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए, जिसको संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म कारण शरीर में रहता है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर है अविद्या, अज्ञान। इस अविद्या में ही का जन्म जन्मांतरों के हमारे जो संचित कर्म हैं, वो संचित कर्म पड़े रहते हैं संस्कार के रूप में, बीज के रूप में, और वही उसका ही जब गुणों के संबंध से और प्राण का गुणों के साथ संबंध होता है। क्या होता है? प्राण का अविद्या के जो गुण है, उस अविद्या के गुण के साथ संबंध होता है, और गुण का संबंध फिर उन संस्कारों के साथ, बीज के साथ होता है। जैसा मिट्टी में पड़ा हुआ बीज, उस बीज के साथ जब पानी का संबंध होता है तो वो बीज अंकुर निर्माण करने का, वो जो जल का संबंध पृथ्वी और जल, वो क्या करता है? उस बीज से अंकुर निर्माण करता है। ये अंकुर क्या है? वासना, वासना अंकुर है। वासनेचे बीज जळूनी जाय, तुकाराम ने कहा है। ये जो वासना है, ये वासना संस्कारों से निकला हुआ बीज है, सूक्ष्म। ये वासना फिर क्या होती है? इंद्रियों में आ जाती है, मन के अंदर ये वासना उद्भूत हो जाती है, और वही वासना जब इंद्रियों में आ जाती है तो इच्छा बन जाती है, और फिर वही इच्छा जब विषयों में पहुंचती है तो क्रिया बन जाती है, और विषयों को प्राप्त करती है तो कर्म बन जाती है। कर्म कब बनती है? जब विषय को आप प्राप्त करोगे, ग्रहण करोगे या छोड़ दोगे। छोड़ोगे तब भी कर्म बनेगा, लोगे तब भी कर्म बनेगा। क्या? छोड़ेंगे तब भी बनेगा और लेंगे तब भी बनेगा। तो कर्म का अधिष्ठान हमारा सूक्ष्म शरीर है। दूसरा कारण बताया, क्योंकि ये कारण शरीर अर्थात अविद्यामय शरीर, और दूसरा साधन बता दिया कर्ता। अधिष्ठान के ऊपर भी बहुत विचार है, ये अविद्या कारण शरीर के ऊपर भी बहुत विचार है, केवल हम इतना सुनते हैं, परंतु कारण शरीर का भी बहुत विश्लेषण करने पर बड़ी गहराई आती है, कारण शरीर की भी, समझे ना। बौद्धों ने, शून्यवादियों ने इस पर बहुत चिंतन किया है, समझे ना। बौद्धों का शून्यवाद जो है वो शून्य क्या है, ये अविद्या ही है, समझे ना। बहुत चिंतन है इसके ऊपर, अब वो चिंतन तो नहीं बताना है, पर केवल इतना ही समझना है कि तुम्हारे कर्मों का अधिष्ठान जो है वो तुम्हारा कारण शरीर है। अब कर्ता कौन है? कर्ता आत्मा है, शरीर है, कारण शरीर है, या और कोई है? कर्ता कौन है? शंकराचार्य जी ने अपरोक्षानुभूति में कहा, संकल्प विविधक कर्ता। संकल्प ही क्या है? विविधक कर्ता अर्थात अनेक प्रकार का जो करने वाला है वो संकल्प है। संकल्प को कर्ता कहते हैं। संकल्प किसका? किसका संकल्प? जो श्रुतियों ने बताया है कि ये को हम बहुश्याम प्रजाए इत्येतत्, ये जो ईश्वर का संकल्प है, या संकल्प विविधक कर्ता जो कहा है वो तुम्हारे अंदर जो आया है वो तो ईश्वर की अनुवृत्ति आई है तुम्हारे अंदर। क्या? ईश्वर के संकल्प से विविधक कर्ता, संकल्प विविधक कर्ता, संकल्प ही ये अनेक प्रकार के कर्मों का कर्ता है। ये सब जीव सृष्टि जो निर्माण हुई है वो किससे निर्माण हुई है? ईश्वर को हम कारण मानते हो कि नहीं मानते हैं? वंदे जगत कारणम, अर्थात हम ईश्वर को कारण मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो संकल्प वाला होने के कारण, वो संकल्प का, संकल्प ने ईश्वर के अंदर कारणत्व का क्या कर दिया है? आरोप कर दिया, आरोप। ईश्वर कर्ता नहीं है, परंतु कर्तापन का आरोप ईश्वर के ऊपर आ गया। क्यों? संकल्प, संकल्प के कारण। संकल्प दो वस्तुओं से होता है, सत और असत। क्या? संकल्प होगा तो विकल्प भी होगा कि नहीं होगा? संकल्प होगा तो विकल्प भी होगा। संकल्प सत्य है, परंतु उसके साथ विकल्प जुटा हुआ है, विकल्प असत्य है। इसलिए संकल्पवान होने के कारण ईश्वर द्वैत भाव को आ गया। क्या आ गया? ईश्वर जो है वो द्वैत भाव को आया। कर्म कहां से आया है हमारे अंदर? ईश्वर से ही आया है, उस कर्ता से, ईश्वर के संकल्प से ही आया है। ईश्वर के संकल्प का प्रथम कर्म क्या है? जीव है, जीव सृष्टि, जिसको प्रजा कहा है। एको हम बहुश्याम प्रजाय, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। बिना कर्म का होगा क्या? इसलिए ईश्वर का संकल्प रूप जीव जो है वो ईश्वर का संकल्प है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये भी सृष्टि कहती है। उस ईश्वर ने इस संसार को निर्माण किया, और संसार को निर्माण करके फिर उसके अंदर क्या कर दिया? प्रवेश कर दिया। किस रूप से? संकल्प के रूप से। उस ईश्वर के संकल्प को हम अहम अहम रूप से, ईश्वर के अंदर भी अहम आ गया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं तो अनेक हो जाऊं, एक हूं अपने एकपन होने का उसको अनुभव आ गया है ना। एको हम कराने से क्या हो गया, मैं एक हूं ऐसा उसने अपना पहला अनुभव किया। ये अपना अनुभव ज्ञान रूप है, ईश्वर का एको हम ये ज्ञान रूप है। ये जब होनेपन का अनुभव आ जाता है तो ये होनेपन का अनुभव अनेक होने की भी इच्छा निर्माण करता है, ये स्वभाव है उसका। क्या इसलिए ईश्वर ने बहुश्याम प्रजायेय, अभी मैं एक हूं तो अनेक हो जाऊं। अब ये संकल्प ईश्वर ने क्यों किया इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। नामदेव ने कहा एकलिए न कंठे ची मनोनिया ते नहीं केली निर्माण चौदाई होने, उसको अकेले को मन ने रगला लग रहा था। इसलिए जब आदमी अकेला होता है ना तो कुछ न कुछ खटपट करता रहता है ना, किसके लिए, अपने ही अभिव्यक्ति के, अपने ही आनंद के अभिव्यक्ति के लिए। ईश्वर ने जीव को बनाया अपना ही आनंद का भोग के लिए बनाया, ध्यान रखो, अपने ही आनंद का अनुभव करने के लिए, अपने ही आनंद का भोग करने के लिए, अपने ही आनंदित होने के लिए। आप भी बच्चे निर्माण करते हो तो किसके लिए करते हो, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं महाराज बच्चा हो जाए तो हम बड़े आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप भी जो सृष्टि करते हो क्यों करते हो, इसका कभी सोचा नहीं आपने। ईश्वर से ही वो परंपरा आई है, मैंने पहले बताया ना कि दो प्रकार की, एक ज्ञान परंपरा और एक कर्म परंपरा। ये कर्म परंपरा भी कहां से आई है, ईश्वर से ही आई है, परमात्मा से ही आई है। वही ईश्वर ने संकल्प, ईश्वर का संकल्प अनेक प्रकार का बनाने वाला है, इसलिए जीव के अंदर भी ईश्वर ही इस शरीर के अंदर, कारण शरीर के अंदर अविद्या में आ जाता है तो जीव भाव को प्राप्त होता है। क्या जब अविद्या में आ जाता है, इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है कि ही आत्मा अविद्या और अविद्या में पड़ा हुआ जो हो चैतन्य का अर्थात आत्मा का जो आभास छाया उसका नाम क्या है, जीव। समझना, तो जब ईश्वर छाया के रूप में इस शरीर के अंदर आ जाता है तो अब वो ईश्वर का है कि इस अविद्या का है, अविद्या का है क्या ईश्वर, ईश्वर किसका है, ओ माया में दिखता है परंतु होता है क्या। तुम शीशे में देखते हो तो क्या शीशे के हो, क्यों नहीं है, तुम तो दिख रहे हो, शीशे में दिख रहे कि नहीं दिख रहे, शीशे में दिखने पर भी क्या तुम शीशे के हो, कभी भी हो सकते हो, नहीं हो सकते, तुम अपने ही रहोगे कि शीशे के बनोगे। इसी प्रकार से यहां आत्मा अविद्या में दिखने पर भी वो अविद्या का नहीं होता है, परंतु दुर्दैव ऐसा, दुर्भाग्य ऐसा कि वो अपने को अविद्या का मान रहा है। क्या जैसा तुम्हारे अंदर भ्रम हो गया, ओ जैसा पंडित जी के अंदर भ्रम हो गया था, निमंत्रण का लोभ उसके अंदर आ गया भंडारे खाने का, तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, शीशे में देख करके तिलक लगा रहे थे, उसी समय उनको भोजन के बुलाने के लिए आ गया, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा करना पंडित जी, शीशे में जो दिखाई दे रहे थे पंडित जी उसको कह रहे, पंडित जी आप इनके घर में आप चले जाओ और उनके घर में मैं जाऊंगा, परंतु जो दक्षिणा मिल जाएगी वो दक्षिणा मेरे को ला कर दे देना। तो वो शीशे में जो दिखने वाले पंडित जी जाएंगे कि नहीं, उसके घर में जाएंगे नहीं, लाएंगे दक्षिणा भोजन करके आएंगे वो नहीं, परंतु फिर भी क्या हो गया, भ्रम हो गया। न होने पर भी होनेपन का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार से जीवपन का भ्रम हो गया है, जीवपन नहीं है, समझ ना। ये भ्रांति के कारण ये आया हुआ अविद्या के कारण उसके अंदर आत्मा के अंदर जीवपन का आरोप है, आरोप। चलो वो दूसरी बात है। यहां मैं ये बताने जा रहा था कि जो करता है ये संकल्प अर्थात ये जो अहम है, अहम, ये जो अहम आपको जो अनुभव मैं हूं इस प्रकार से जो आपको अनुभव आ रहा है, ये अहम ही क्या है, करता है। अहम के बिना जब तक आपके अंदर अहम स्फुरित नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते हो, क्या? इसलिए ये दूसरा कारण बता दिया, कर्ता कौन है, आपका अहम अर्थात जीव भाव, जीवपना, जीवपना कहो, आभास कहो, और भी कई प्रकार उसके नाम है, संकल्प भी का, ईश्वर के संकल्प का नाम ही तो जीव है और कुछ नहीं है, समझ ना। ईश्वर कोई जीव बना नहीं है, परंतु ईश्वर के संकल्प के कारण ईश्वर पर जीवपन का आरोप आ गया है, यह संकल्प ही अविद्या है, समझे ना। अविद्या क्या है, अविद्या ये जो ईश्वर का संकल्प है, इस संकल्प का नाम ही अविद्या है, इस संकल्प के ही तीन रूप है, समझ। संकल्प में तीन तत्व, तीन तत्व है, क्या क्या, ज्ञान है कि नहीं, बिना ज्ञान का संकल्प होगा क्या, नहीं, ज्ञान है। फिर ज्ञान के अंदर जो सूक्ष्म हलचल है, क्रिया जिसको, वो क्रिया है, और संकल्प उस क्रिया का फल है, संकल्प कर्म है, कर्म क्या है, संकल्प किया ना, तो संकल्प किया तो उस ज्ञान के हलचल से संकल्प निर्माण हो गया, तो संकल्प फल हो गया कि नहीं है, तो उस क्रिया का संबंध संकल्प रूपी फल के साथ होने के कारण वो संकल्प क्रिया बन गया, कर्म बन गया। ये ज्ञान का ही, देखो ज्ञान का ही स्फुरन, ध्यान रखो, ज्ञान का ही क्या है, ज्ञान में ही स्फुरन आ गया। ज्ञान कौन, परमात्मा, ईश्वर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी ज्ञान में सूक्ष्म स्फुरन हुआ और उस स्फुरन का फल संकल्प निर्माण बन गया। तो ईश्वर है ज्ञान स्वरूप, अर्थात ईश्वर है ज्ञान, ईश्वर के अंदर जो स्फुरन है ये स्फुरन क्रिया है और उस क्रिया का फल है संकल्प। तो संकल्प में तीन वस्तु आ गई, वो तीन वस्तु को ही तीन देवियों का नाम है, ज्ञान स्वरूपा महासरस्वती, जो क्रिया रूपा है वो महालक्ष्मी, और जो संकल्प रूपा कर्म जो है वो कर्म है महाकाली। ये अद्याशक्ति जिसको कहा जाता है, क्या, शास्त्र में जिसको अद्याशक्ति कहा गया है, ये अद्याशक्ति ईश्वर के संकल्प का ही नाम है। अब ये संकल्प और इसी को ही तीन गुण कहा गया है, सत्व रजतम, सत्व गुणा महासरस्वती, रजोगुणा महालक्ष्मी, तमोगुणा महाकाली, महाकाली को ही तमोगुण कहा गया है। तो ये तीन प्रकार की ये गुण है, गुण का मतलब शक्ति, शक्ति तीन प्रकार की शक्ति है, ईश्वर के संकल्प में ये तीन प्रकार की शक्ति है। वही शक्ति ईश्वर के संकल्प रूप जीव होने के कारण जीव के अंदर भी ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और कर्म शक्ति है। इसलिए संकल्प को विविधक कर्ता कहा है, क्योंकि गुणों के कारण ये जो गुण है सत्व रज तम, इस ये शक्ति है, संकल्प की शक्ति है। इसलिए संकल्प आपने शक्ति से अनेक प्रकार की सृष्टा सर्जन निर्माण कर सकता है। इसलिए तो शुरुआत में संकल्प सृष्टि थी, मैथुन सृष्टि तो बहुत बाद निर्माण हुई है, परंतु शुरुआत में ये संकल्प सृष्टि थी। ईश्वर के संकल्प से ही तो ब्रह्मा निर्माण हुआ है। क्या ब्रह्मा जी किससे निर्माण हुए हैं? संकल्प कहां होता है? नाभि स्थल में होता है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में होता है, समझे ना? इसलिए वो नाभि कमल क्या है? वो ज्ञान। ऊपर जो कमल है वो कमल ही क्या है? रजोगुण, स्फुरन रूप, स्फुरन का ही रूप है। और उसमें निर्माण उत्पत्ति किसकी? ब्रह्मा की। ब्रह्मा कौन है? जीव है। जीव ब्रह्मा को वेदांत शास्त्र में एक जीववाद में ब्रह्मा जी को अर्थात हिरण्यगर्भ को जीव कोटि में कहा है। ये प्रथम जीव है, एक जीव। यही जो जीव है इसी की ही अनुवृत्ति सभी शरीरों के अंदर आ गई है। उस ब्रह्मा जी ने शरीरों को निर्माण किया है, समझे ना? जो जीव है ये सब सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा जी की मानी जाती है, अर्थात ये सब जीव सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि है ब्रह्मा जी, समझे ना? और ब्रह्मा जी की सृष्टि है ये जगत, ब्रह्मा जी ने इसको निर्माण किया है। तो कैसा? इस प्रकार से वो ब्रह्मा अब जीव में ब्रह्मा ब्रह्मापन भी आ गया, ईश्वरपन भी आ गया और ब्रह्मपन भी आ गया। तीनों भी ये जीव के अंदर समाहित है, क्योंकि परंपरा वहीं से आई है। तो सूत्र जो है वो अनुसूत वृत्ति चलती है, ज्ञान की परंपरा और फिर कर्म की परंपरा। इसलिए तो दो परंपरा बताई जाती है। आत्मा की परंपरा आ गई अर्थात ब्रह्म की परंपरा आ गई और ईश्वर की परंपरा आ गई। ईश्वर की परंपरा कर्म परंपरा, ब्रह्म की परंपरा ज्ञान परंपरा। इसलिए दो परंपरा हमारे अंदर जीव के अंदर निहित है स्वभाव से। तो ये तो जीव है, जीव इस कर्म का क्या है? करता है। तीसरा साधन बता दिया था करण। करण का मतलब इंद्रिया का, इंद्रिया दो प्रकार के करण होता है, एक बाह्य करण एक आंतरिक करण। तो अंदर के करण को ही अंतकरण कहा जाता है। अंतकरण क्या है? चार प्रकार का, मन बुद्धि चित्त अहंकार। क्या? जीव रूप अहंकार अलग है, समझे ना? और ये जो बुद्धि स्फुरित जो हो अंतकरण में जो हो वृत्ति होती है वो कर्म रूप अहंकार है। अहम करोति इति अहंकार, समझ ना? जहां अहम 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 जो किया जाता है वो आपके अंतकरण का भाग है, समझ ना? परंतु ये नहीं किया जाता है तब भी जो होता है वो जीव रूप अहंकार है। हाँ? तीन है अहंकार, ध्यान में आ गए मेरी बात को? एक अहम करोति अर्थात जो अंतकरण में जो तुम्हें आपने मैपन होने का जो हो शरीर को लेकर के जो अभिमान निर्माण हो रहा है ये अंतकरण का अहम है। इसलिए तो सूक्ष्म ध्यान दो, मेरा प्रवचन कोई ऐसा कथा नहीं है। सूक्ष्म ध्यान दो, जो आप आंतक मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार वस्तु अंतकरण के भाग माने हैं कि नहीं माने हैं? तो ये अहम कौन सा है? ये जीव रूप अहम नहीं है, ये देह को लेकर के उस जीव में आया हुआ जो कर्म है, ये कर्म रूप अहंकार है। समझे ना? क्या मैं हूं ऐसा कहते हो कि नहीं होते हो? तो ये मैं हूं ऐसा कह रहे तो ये कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है? ये कर्म बन रहा है। समझे ना? इसलिए इसको अंतकरण का एक भाग माना है। ये अंतकरण से निर्माण होता है। इसके पूर्व में जब सुषुप्ति में अंतकरण नहीं रहता है, परंतु क्या जीव रहता है कि नहीं रहता है? वो कौन आम, वो कौन सा आम है? वो जीव रूप आम है जो वो ईश्वर बना हुआ है, ईश्वर का आभास है वो। एक ईश्वर का आभास रूप जीव अहम, क्या ईश्वर का आभास रूप एक अहम, और उस अंतकरण का अंतकरण की क्रिया का फल रूप एक अहम। दोनों अहम में अंतर आ गया? समझ में आया? इस अहंकार को मैं कभी समझना नहीं है। ये कर्म है, कर्म ये तुम नहीं हो। यहां कर्ता जो बताया है इसका, ये इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको, तभी तो। कर्म कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, ईश्वर कर रहा, आत्मा कर रहा है, या कौन कर रहा है? अंतकरण में जो अहम का स्फुरन हो रहा है, अर्थात जो कर्म रूप अंतकरण का एक अंश है, भाग है, उससे कर्म निर्माण हो रहा है, वो कर्म का कर्ता है। इसलिए संकल्प विविधक कर्ता कहा है। समझे ना? संकल्प अंतकरण में ही होता है कि नहीं है? तो अंतकरण ही संकल्प, पहला संकल्प क्या है? एको हम, आया नहीं है? इस प्रकार से ये अहम यहां, ये अहम तुम्हारा कर्म का करता है, और ये जिसमें अभिव्यक्त हो जाए, ये किसमें अभिव्यक्त होगा? इंद्रियों में होगा। किसमें होगा? इंद्रियों में होगा। और या इसलिए इंद्रिया भी क्या है? उस अहम को अभिव्यक्त करने का साधन हो गया। अभिव्यक्ति एक कर्म हो गया, और अभिव्यक्ति का वो साधन हो गया, क्या हो गया? साधन हो गया। इसलिए उसको भी एक साधन माना है। किसको? इंद्रियों को भी। अब कौन सी? सभी इंद्रिया। समझ, क्योंकि आपका अहम का अनुभव आपको कान में भी होता है, रस में भी होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सभी में होता है कि नहीं होता है? मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं खाता हूं, आदि आदि सबके साथ मैं का है कि नहीं है? ये कौन सा मैं है? ये जीव रूप मैं नहीं है, ईश्वर रूप मैं नहीं है, ये अंतकरण का एक संकल्प रूप मैं है। अहम अहम कर रहा है, इसलिए ये इंद्रिया अभिव्यक्ति का साधन होने के कारण, और फिर क्रिया का भी साधन होने के कारण, बाह्य कर्म करने के लिए ये क्रिया इंद्रिया जो है, इन इंद्रियों के माध्यम से वही जो इंद्रियों में अभिव्यक्त हो रहा है, वही क्रिया जब बाहर आ जाती है, विषयों के पास जाती है, तब वो कर्म के रूप में स्फुरित होती है, या कर्म के रूप में अभिव्यक्त होती है, या कहा जाता है। इसलिए ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया भी क्या है? करण है। इंद्रिया तुम हो क्या? इंद्रिया तुम हो नहीं है। चौथा कहा कि विविधास्त्र पृथक चेष्टा। भाई दो मिनट तो ज्यादा हो गया है और दो बाकी, अभी दो बाकी है। अब मैं क्या करूं, 20 मिनट तो आप लोगों ने पहले खाए, हमारे अधिकार जो हमारा अधिकार के थे वो आप लोगों ने पहले खाए, मैं क्या करूं। और आज का दिन लास्ट है, चलो संक्षेप में बता देता हूं। पृथक चेष्टा का मतलब जो प्राण है, प्राण चेष्टात्मकम प्राण, प्राण का स्वरूप है चेष्टा। बिना प्राण की चेष्टा का कर्म नहीं हो सकता है। ये प्राण भी कितने हैं, 10 प्राण है, 10 प्राण, पंच प्राण और पंच उप प्राण। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कृकल देवदत्त धनंजय, नागपुरम कृकल देवदत्त धनंजय, ऐसे 10 मुख्य प्राण, 5 और 5 उप प्राण है। जो आंतरिक कर्म हो चाहे बहिरंग कर्म हो, इन प्राण की चेष्टा का संबंध मैंने पहले बता दिया था कि प्राण के संबंध का चेष्टा, प्राण का संबंध संस्कारों के साथ और गुणों के साथ नहीं होगा तो गुण क्रियान्वित नहीं हो सकते हैं और गुण संस्कारों को क्रिया उद्भूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये प्राण की जो चेष्टा है, ये प्राण की चेष्टा भी क्या है, एक कर्म का कारण है, क्योंकि बिना प्राण की चेष्टा का कर्म हो नहीं सकता है, क्रिया निर्माण हो नहीं सकती है, बिना क्रिया का कर्म बन नहीं सकता है। तो प्राण की चेष्टा एक कारण है। और पांचवा कारण बताया दैवम, अर्थात इन इंद्रियों की सभी की अधिष्ठात्री देवता है। इंद्रियों के अंदर उस वस्तु को धारण करने की जो शक्ति है, क्रिया को धारण करने की शक्ति, उस शक्ति का नाम है दैव, समझना। तो हमारी प्रत्येक इंद्रियों की क्या है, अधिष्ठात्री देवता है। उसको हम अब वो सब शक्तियां जो है, जितने भी दैव है, इंद्रियों की अधिष्ठात्री शक्तियां, ये कौन है, देव, कौन, आत्मदेव। आत्मदेव की ही शक्ति उन इंद्रियों में आ जाती है तो वह नामकरण भिन्न होता है, उपाधि भिन्न होने से उसी शक्ति का नामकरण क्या होता है, भिन्न होता है। इसलिए पांचवा है ये दैव। इसलिए ईश्वर इच्छा बलिय सिका, ये मोटे तौर से लोग कहते हैं कि नहीं है, क्या ईश्वर इच्छा बलि ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हो दैव है, जो शक्ति है, ये चार है परंतु दैव नहीं है, अर्थात देवता आत्मा की शक्ति यदि उसके साथ नहीं मिली है उसको धारण करने के लिए या प्रसन्नित करने के लिए। प्राण को अंदर बाहर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसी को ही देव कहा गया है। प्राण को अंदर खींचता है, अंदर खींची हुई प्राण को फिर बाहर फेंकता है, कौन कर रहा है, तो प्राण के अंदर चेष्टा निर्माण करने वाला जो देव है वो पांचवा, वो इन इंद्रियों के साथ संबंध होने के कारण उसका नामकरण भिन्न हो गया। हाथ की देवता क्या कहते, इंद्र कहते, पैर की देवता वासुदेव कहते, कान की देवता नाक की देवता, आंख की देवता जिह्वा की देवता, अलग अलग बताए कि नहीं है। तो ये दो दैव हैं, ये पांच, इस प्रकार से ये पांच कर्म के क्या है, कारण है। अब इसमें बताओ कि आत्मा का संबंध किसी के साथ, किसी कर्म के साथ आया है, हा? आत्मा का संबंध किसी के साथ भी आया है क्या, अर्थात इसलिए शास्त्रों ने कहा कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, ज्ञान और कर्म दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा है और कर्म अज्ञान स्वरूप कर्म है। इसलिए क्योंकि ये सब कहां से, कर्म का आरंभ कहां से हुआ है, इसलिए शास्त्रों ने कर्म को अविद्यामय कहा है, अज्ञानमय कहा है। इसलिए कर्म तुम नहीं हो और कर्म तुम्हारा भी नहीं है, तो फिर फल तुम्हारा कैसा हो सकता है? प्रश्न ये है, जब कर्म ही तुम्हारा नहीं है और कर्म ही तुम नहीं हो, तो कर्म का फल तुम कैसा बन सकते हो और कर्म का फल तुम्हारा कैसा हो सकता है, ये प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से इसका कारण का अर्थात इन कर्मों के साधनों का आप चिंतन करेंगे तो आप अपने को अपने आप ही अलग रूप से अनुभव करोगे। तो ये जो आप चिंतन कर रहे हैं, इस चिंतन का फल क्या हो रहा है? तुम्हारी अपनी सिद्धि हो रही है। क्या नहीं समझ में आया? चिंतन आपका किसका कर रहे हो? कर्म का कर रहे हो। चिंतन तुम कर्म का कर रहे हैं, अपने से भिन्न कर रहे हैं या अपने से अभिन्न कर रहे हैं? भाई देखो ऐसा, ये तो हमारी जो जब ये चलती है ना, तब मैं अपने में नहीं होता हूं, समझ रहे ना? इसलिए तर्क भी आते हैं, उसके उत्तर भी बहुत आते हैं। बहुत दिमाग में तो इतना तेज ये चल रही है, परंतु घड़ी जवाब दे रही है और फिर इसके बाद फिर मेरे को स्वाध्याय भी करना है। करने का मतलब होता है कि ये तुम्हारे में नहीं है, परंतु ये तुम्हारे से हो रहे, इसलिए तुम्हारे में इसका आरोप आ रहा है, समझे ना? बस इतना ही समझना है। इसलिए कर्म को अपना मत समझना, कर्म को हम मत समझना, कर्म को अलग भिन्न रूप से देखला। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् स्मरन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये प्रकृति का कर्म है, प्रकृति में छोड़ दो, तुम अपने पर मत ले लो, बस इतनी ही सावधानी रखो। इस तुम कर्ता नहीं बनोगे, और कर्ता नहीं बनोगे तो तुम्हारा कर्म ज्ञान रूप अपने आप ही बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञान रूप अपने आप ही बनेगा। कर्ता नहीं बनोगे तो कर्म तुम्हारा तुम्हें कुछ न कुछ तो करेगा है, तो तुम्हें ज्ञान रूप बनाएगा। ये इसका क्या है तात्पर्य है। विचार इस पर बहुत होता है। गीता तो एक अलौकिक ग्रंथ है, परंतु चलो दो चार दिन का सेवा का अवसर मिल गया था और ऐसे ही मेरे दिमाग में बात आ गई, इसलिए आप लोगों को सुना दिया। जो हमारे दिमाग में बात आ गई वो आप लोगों को सुना दिया। आपको अच्छी लगी तो स्वीकार करो, और नहीं लगी तो मेरा कोई आग्रह नहीं है। छोड़ोगे तब भी तो मेरे ऊपर नहीं छोड़ोगे, तुम संसार में छोड़ोगे। तो इन बातों का चिंतन करना चाहिए, और चिंतन इसलिए करना चाहिए, चिंतन रूप कर्म है, उस कर्म का फल आत्मसिद्धि हो। कर्म की ही कर्म का फल है आत्मसिद्धि, अर्थात अपने अपने ही सिद्धि। कर्म के द्वारा ही हम अपने को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका भगवान का ये तात्पर्य है। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम